आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानवर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए समावेशी और सतत विकास पर जोर दिया। हैदराबाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से की चर्चा, कहा ग्रीन एनर्जी है राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी तत्परता से जारी और प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब कोहरे का भी असर, शाजापुर सीहोर सहित कई जिलों में छाई धुंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ अफ्रीका के जोहानवर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए समावेशी और सतत विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने अफ्रीका में पहली बार G20 सम्मेलन के आयोजन पर कहा कि ये वैश्विक विकास मापदंड पर फिर से विचार करने और ऐसे विकास को प्राथमिकता देने का सही समय है जो समावेशी तथा टिकाऊ दोनों हो। उन्होंने कहा कि ये भारत के सांस्कृतिक मूल्यों, खासकर एकात्म मानववाद के सिद्धांत का एक सार्थक रास्ता दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने एक G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम गठित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों को प्रशिक्षित चिकित्सीय विशेषज्ञों की टीम बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे किसी भी आपातकाल स्थिति में तुरंत तैनाती की जा सके। नशीले पदार्थ की बढ़ती चुनौती, खासकर फेंटेनिल जैसे खतरनाक पदार्थों के फैलाव से निपटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने सदस्य देशों से ड्रग ट्रेडर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए एकजुट होने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए आज हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये सत्र उद्योग समूहों के लिए मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों को जानने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणाली और नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का बारीकी से अवलोकन किया। डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हर निवेशक और कंपनियों का मध्य प्रदेश में तहे दिल से स्वागत है। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. दीपक जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े पुराने कानूनों को कई आधुनिक प्रावधानों के साथ अपडेट किया गया है। श्रमिक वर्ग ने भी नई श्रम संहिताओं का स्वागत किया है।
शायद मैं सबसे पहले मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उनके नियम है। जैसा कि एक नियम है कि हफ्ते में हम 48 घंटे काम करते हैं, 6 दिन करते हैं 8-8 घंटे करके, एक दिन हम ऑफ लेते हैं, तो उसमें ये नियम किया गया है कि हम 12-12 घंटे करके 4 दिन काम कर सकते हैं, 3 दिन रेस्ट भी ले सकते हैं, और यदि उन 3 दिनों में हम काम करेंगे तो हमें उसका ओवर टाइम दिया जाए। दूसरा नियम ये हुआ है कि जो हर साल जैसे हम कंपनी को छोड़ते थे तो हमें कोई फायदा उससे नहीं होता था, 5 साल यदि हम 3 साल करेंगे तो उसे कंपनी से हम ग्रेजुएटी हमें प्राप्त होती थी, लेकिन अब नियम सरकार का जो हुआ है यदि हम कोई कंपनी में 1 साल के बाद रिजाइन देते हैं, कंपनी छोड़ के 1 साल के बाद जाते हैं, तो हमें हर साल उसका वो मिल सकता है, ग्रेजुएटी हो सकते हैं। और तीसरा नियम लेडीज संबंधित है, जैसा कि अभी हम ए शिफ्ट और जनरल शिफ्ट लेडीज से करा सकते थे, अब हम ए और बी दोनों शिफ्ट उनसे हम करा सकते हैं।
ये नया कानून लागू हुआ है जिसमें पहले से नए कानून जोड़े गए हैं, है ना। मैं आप लोगों को मेडिकल सुविधा साल में एक बार कंपनी कराएगी, मैं आप लोगों को पहले से बोलता था और नए कानून में वो भी प्रावधान दिया जा रहा है। और दूसरा मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट का एक रेट तय किया गया है जो मिनिमम मजदूरी दर है, उससे कोई भी कम पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है,
समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है। आज सीहोर जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी बाला गुरु ने जिला मुख्यालय के आसपास के मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर SIR कार्य की प्रगति देखी। इस दौरान उन्होंने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए गांव के शिक्षित युवक युवतियों और वॉलंटियर्स की मदद लेने को कहा। गुना में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज वार्ड 20 और वार्ड 21 के दौरा कर SIR कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने BLO से घर घर सर्वे की स्थिति, लंबित फॉर्मों की संख्या और अपडेट किए गए फॉर्मों की जानकारी ली। कलेक्टर ने वार्डवासियों से बातचीत कर उन्हें सर्वे में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की सभी 3 विधानसभा पन्ना, पवई एवं गुनौर में ये कार्य संचालित किया जा रहा है। यहाँ 4 बूथ लेवल अधिकारियों ने 14 दिवस पूर्व ही 100% कार्य पूर्ण कर लिया है। BLO सुधीर कुमार पांडे ने आकाशवाणी से बात की।
मेरा नाम सुधीर पांडे है, मैं BLO हूँ मतदान केंद्र क्रमांक 162 रामपुरा में। और मेरी 100% मैपिंग जो मैंने किया है, कंप्लीट किया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि मैंने सबसे पहले मैपिंग मैंने बहुत पूर्व में कंप्लीट कर ली थी। और मैपिंग करने की वजह से लगभग काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि 97-98% मैपिंग थी। तो मैंने सारा डेटा, मैंने जब ऑनलाइन करना शुरू किया तो सारा डेटा मेरे पास उपलब्ध था, तो काम करना मुझे बहुत आसान हो गया और मेरा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है कम्प्लीट हो गई। ऑफलाइन फॉर्म हो या ऑनलाइन काम करना कम्प्लीट हो गया और अच्छा हुआ। और आज मैं कलेक्टर मैडम द्वारा मुझे सम्मान दिया गया, इसके लिए मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और इसमें सभी का सहयोग रहा, मेरी तहसीलदार मैडम का भी और मेरे जो सहयोगी थे, सभी का सहयोग रहा इसमें, तभी मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाया।
प्रदेश के शासकीय और शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 के लिए सोमवार 24 नवंबर से आयोजित होने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथि बढ़ाई गई है। अब मूल्यांकन का कार्य 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 के मध्य होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने वर्तमान में प्रदेश में संचालित चुनावी प्रक्रिया SIR में शासकीय कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण कक्षा 3 से 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथियों को आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है। इस संबंध में नवीन समय सारणी जारी की है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का भी असर दिखाई देने लगा है। आज सुबह कई शहरों में कोहरे का असर देखा गया। शाजापुर में घना कोहरा छाया रहा। अकोदिया शुजालपुर क्षेत्र में सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर तक ही रही। इधर रात का पारा कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। भोपाल इंदौर में 9.4 डिग्री, ग्वालियर में 13 डिग्री, उज्जैन जबलपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री रहा। राजगढ़ में 8.2 डिग्री, खरगोन में 8.6 डिग्री, नौगांव में 8.8 डिग्री, नरसिंहपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। बीते दिन जिले का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि बजट को लेकर वे अपने सुझाव दें, जो भी सुझाव उपयुक्त होंगे उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने आज बैतूल में 7.90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टिकारी गाड़ाघाट मार्ग का भूमि पूजन किया। खंडवा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कल मैराथन दौड़ के साथ किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तथा अन्य जनप्रतिनिधि इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आज 22वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1600 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें से 72 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।